मित्र पहुंचा था दूसरे मित्र के यहां पर, बहुत वर्षों के बाद मिला था वो। बहुत चर्चा हुई और इतनी चर्चा होती रही कि शाम घिर गई। मित्र तो बचपन से ही आंखों की रोशनी खो बैठा था, सो जब रात के अंधेरे में लौटने का समय आया तो उस मित्र ने कहा कि भाई मेरी लाठी मुझे दो, मैं अपने घर जाऊंगा। तो जिस मित्र के यहां पहुंचा था उसने कहा कि लाठी की क्या जरूरत है, तुम तो लालटेन लेकर के जाओ। ऐसा सुनते ही उस प्रज्ञा चक्षु सूरदास मित्र ने धीरे से कहा कि तुम मेरे मित्र होकर कभी मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे, मैं लालटेन का करूंगा क्या, मुझे तो दिखाई ही नहीं देता, मेरी तो लाठी दे दो, मैं ठक ठक करते हुए इशारा करके लोगों को चले जाऊंगा कि अंधा आदमी हूं, कोई मेरे से टकरा मत जाना। मित्र ने कहा कि नहीं नहीं, तुम अभी जानते नहीं हो, लालटेन मैं तुम्हारे लिए थोड़ी दे रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगा ऐसा हो सकता है, मैं तो लालटेन इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि लालटेन लेकर के जाओ, उसकी रोशनी दूसरे लोगों को दिखती रहेगी, उसकी रोशनी में भी तुम्हें देख लेंगे, तुमसे टकराएंगे नहीं। बात बड़ी लॉजिकल थी, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि सम्मत बात थी ये तो, कि ठीक है अंधा आदमी हाथ में लालटेन लेके चले तो कम से कम अंधेरे में उस लालटेन के प्रकाश में उस अंधा आदमी दिखता रहेगा, सामने वाले को टकराएगा नहीं। और अपनी लाठी वहीं रख करके लालटेन हाथ में लेकर के वो प्रज्ञा चक्षु मित्र सूरदास मित्र अभी 100 कदम ही आगे चला था अंधेरे रास्ते पर कि सामने से कोई आकर के टकराया, तो उसके मुंह से निकल गया कि क्या आप भी मेरे जैसे ही हैं, आपके भी आंखों में रोशनी नहीं है क्या। तो जो टकराया था उसने कहा कि नहीं सूरदास जी, मेरे तो दोनों आंखें दुरुस्त हैं, लेकिन क्या करूं, आप दिखाई ही नहीं पड़े अंधेरे में। तो सूरदास ने कहा कि भाई मैं तो लालटेन लेके जा रहा था, क्या आपको वह भी नहीं दिखाई पड़ी। उसने कहा सूरदास जी लालटेन जली हो तब तो दिखाई पड़े, लालटेन कब बुझ गई यही नहीं मालूम आपको, अब समझ में आया। कितनी भी लालटेन ऐसी जला करके अंधा आदमी चला जाए तब भी टकराएगा, ये ध्यान रखना। अपनी स्वयं की दृष्टि, अपना स्वयं का विवेक, अपना स्वयं का सदाचरण। इसलिए लिखा कि अंधे के हाथ में कितनी भी लालटेने हों, ऐसे ही चारित्रहीन के हाथ में कितना भी ज्ञान दे दिया जाए वो उसके जीवन का उद्धार नहीं कर सकता। वापस लौट के आया अपने मित्र के पास और कहा कि संभालो अपनी ये लालटेन, मुझे लाओ मेरी लाठी, कम से कम मुझे अपने अंधे होने का एहसास तो होता रहेगा, इसमें तो मुझे जली हुई लालटेन मैं ऐसा एहसास होने लगा था कि जैसे मैं सब देखता हूं, जैसे मैं सब जानता हूं। पोथी के ज्ञान से कहीं ऐसा भ्रम ना हो जाए कि मैं सब जानता हूं, मुझे लाओ मेरी लाठी ताकि मैं उसको ठक ठक करके लोगों को ताकीद करता रहूंगा कि भाई मुझे दिखता नहीं है, तुम मुझसे बच के चलना, ताकि मुझे अपने आंख की रोशनी नहीं है ये ठीक ठीक ज्ञान बना रहे। अभी तो लालटेन से ये भ्रम पैदा हो गया था कि जैसे मेरे आंख में रोशनी आ गई है मैं तो आराम से चले जा सकता हूं। भाई ऐसा ही अपने जीवन में भी है, अपन को ज्ञान की चार बातें हासिल हो जाती हैं तो अपन ऐसा समझने लगते हैं कि हो गया अब तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं भैया, उस ज्ञान की चार बातों से जीवन जितना अच्छा बन सके वो साथ में जाएगा, जितने परिणाम निर्मल हो सके वो साथ में जाएगा, बाकी और कोई चीज़ किसी के साथ नहीं जाती, पोथी यहीं रखी रह जाती है। और जितना भी हमने जाना है वो सब भी भूल जाते हैं, पर जितने हमने अपने कषाय भावों को कम किया है, जितनी अपनी मिथ्यात्व और अज्ञान को घटाया है, वास्तव में वो साथ में जाने वाला है। इसलिए जब जब भी हम और ज्ञान हासिल करें ये सावधानी रखें कि मुझे अपने जीवन में सदाचार पूर्वक इस ज्ञान को हासिल करके अपना आत्म कल्याण करना है। इसी भावना के साथ बोले आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल नेत्रा में सोता हो,
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो
अर्घ्य निशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो,
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो,
करते तप शैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में,
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में,
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झरती हो फुल झड़ियां,
अवबंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां,
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां,
दिन रात लुटाया करते हो शम सम की अभिनश्वर मणियां,
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम,
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम, मिथ्या तम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर वास वेखो भानु शिव खानी है,
छाहो द्रव्य जान वेखो बंध विधि भान वेखो स्वपर पिछान वेखो पर प्रमाणी है,
अवताय वेखो जीवो के जताय वेखो कौन सताय वेखो भव्य उदयानी है,
जहाँ तहाँ तार वेखो पार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो यही जिन वाणी है,
वाणी के जानते सुझे लोका लोग सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो,
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई भवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे ओम ह्रीम। परम पूज्याचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के संगस्त मुनि श्री श्यामा सागर जी महाराज मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के परम पावन चरणारविंदों को अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरपामीति।
हमें वो बहुत बड़ा ज्ञान दे रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी तो कागज के टुकड़े तिजोरी में बंद करके रखे हैं, बस इतने ही कि थोड़ी मोहर लगी उस पर, हैं तो वो कागज के ही टुकड़े, और मन तो यही करता है जब जब भी लोगों के बीच पहुंचते हैं कि हमारे ही झंडा फहराए सब तरफ सारे संसार में, सारा साम्राज्य हमारा हो, यही तो भीतर आकांक्षा लिए बैठा रहता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें और हम में ज्यादा फर्क ना हो, हमने भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की ज्ञान की बहुत सारी बातें सीख ली हो, तो अकेले ज्ञान की बातें सीख लेने से कोई ज्ञानी हो जाता तब तो फिर पोथियां सबसे ज्यादा ज्ञानवान होती, पोथियों में ज्ञान हो सकता है लेकिन वे ज्ञानवान नहीं है, हमारे बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हम ज्ञानवान हो। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि जब हम ज्ञान हासिल करें तब उसका जो फल है वो हमारे जीवन में प्रतिफलित होते दिखना चाहिए। आज हम ज्ञान की बातों का संचय करने की प्रक्रिया से तो बहुत गुजरते हैं। रात 12 बजे भी किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि संसार कैसा है, हम आधी अधूरी नींद में भी कहेंगे दुखमय है, लेकिन जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले उसी संसार में हमारी दौड़ शुरू होगी जो रात थकने से पहले तक चलती रहेगी और रोज शुरू होगी और रोज थकने तक हम रोज उसी की यात्रा करेंगे। हमारे पास ज्ञान की बातें हैं लेकिन वो ज्ञान की बातें हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। वो दूसरे को प्रभावित करने के लिए हो सकती हैं कि कितना ज्ञान है, लेकिन हमारे अपने जीवन को वो कितना, हमारे जीवन को कितना भला करने में मदद कर रही हैं, कितना हमारे जीवन का उपकार कर रही हैं, वो सब ज्ञान की बातें ये हमें खुद देखना पड़ेगा अपने भीतर झांक करके। जब जब भी हम जाने तब तब हम देखें कि जानना कैसा हो, श्रद्धा से समन्वित हो और आचरण से सुगंधित हो। आचरण ज्ञान को खुशबू देता है, श्रद्धा ज्ञान को संभालती है, इसलिए दोनों के बीच में रखा गया है। जब जीवन को अच्छा बनाने की शुरुआत हम करते हैं तो ज्ञान तो जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है, उस मार्ग से परिचय होना जरूरी है, अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार हमारे पास होना जरूरी है, लेकिन वो विचार श्रद्धा से समन्वित हो और आचरण से युक्त होना चाहिए। श्रद्धा और आचरण उसे संभाले हो, वरना ज्ञान बहुत खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए दो दो लोग उसके बाजू में खड़े हों उसे संभालने के लिए, बीच में रखा गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो ज्ञान को बीच में रखना पड़ा, पहले सम्यक दर्शन और पीछे चारित्र। इन दोनों से युक्त होगा अगर ज्ञान तो संभला रहेगा, वरना तो गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। ज्ञान का तो ऐसा है कि मिथ्यात्व के साथ हो जावे तो वही संसार बढ़ाने वाला, और अगर वही सम्यक दर्शन के साथ होवे तो संसार से पार लगाने वाला। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। वही ज्ञान अगर राग से युक्त है तो संसार बढ़ाने में कारण बनेगा, भौतिक ज्ञान कहलाएगा, और वही अगर राग से रहित है तो वही वीतराग विज्ञान कहलाएगा और हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में कारण बनेगा। इसलिए थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। अब जबकि हम ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपाय कर रहे हैं तो हम सावधान रहें कि ज्ञान का जो कार्य है वो भी होना हमारे जीवन में दिखना चाहिए। पुत्र हो तो कब पुत्र कहलाएगा, जब वो कि पुत्रोचित कार्य करे, पिता के अनुरूप वो अपने कुल की परंपरा और धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाए तो पुत्र कहलाएगा। इसी तरह से ज्ञान वो कहलाएगा जो मेरे जीवन को निर्मल बनाए, मेरी कषायों की मंदता में कारण बने, मेरे अज्ञान को हटाने में कारण बने। ज्ञान हानिर राग द्वेष हानिर्वा परस्पर प्रीति जायते इति ज्ञानस्य फलम्। ज्ञान का फल क्या है ये मुझे ध्यान में रहे। जब जब भी मैं चार बातें ज्ञान की सीखूं तो याद रहे मुझे कि ये इसका प्रतिफल मुझे मेरे जीवन में ये मिलना चाहिए कि अज्ञान की हानि, मेरा अज्ञान हटना चाहिए। उपेक्षा या कि राग द्वेष योर हानिर, राग द्वेष में भी कमी आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं चार बातें ज्ञान की सीख करके और अधिक राग द्वेष बढ़ा रहा हूं और परस्पर प्रीति जायते प्राणी मात्र के प्रति मेरे मन में मैत्री और प्रेम का सद्भाव का भाव उत्पन्न होना चाहिए। जेन रागा विरज्येज जेन मित्ति पभासेज जेन तत्त्वम विबुज्येज तम नानम जिन शासने। जिनेन्द्र भगवान के तो शासन में ज्ञान उसी का नाम है जिससे कि जेन रागा विरज्येज जिससे संसार के राग द्वेष से विरक्ति हो, और जेन मित्ती भवासेज जिसके द्वारा हमारे जीवन में प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव आए। मैत्री के मायने समझते, शत्रुता और मित्रता से ऊपर की चीज है मैत्री। मैत्री की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठे तो बनाते हैं, परिभाषाएं अगर बनाने में कोई माहिर हैं तो एकमात्र आचार्य हैं पूज्यपाद स्वामी। लक्षणम पूज्यपादस्य, अगर लक्षण किसी ने बनाए हैं तो पूज्यपाद आचार्य महाराज ने बनाए हैं। वो बनाते हैं कि मैत्री कौन सी चीज है, तो कहते दूसरे को दुख ना हो ऐसी भावना का नाम मैत्री है। किसी को भी दुख ना हो ऐसा भाव हमारे भीतर में, ये हमारे अपने हैं इसलिए इनको दुख ना हो, ये तो मित्रता है। मैत्री वो है जिसमें कि किसी को भी इस संसार में दुख ना हो, सब दुख से ऊपर उठ सकें, वो भाव वो मैत्री भाव। जेन मित्ती बवासी मैत्री बढ़े, अब तो ज्ञान जितना बढ़ता है उतनी मैत्री घटती जाती है, जितना ज्ञान बढ़ता है उतना राग द्वेष बढ़ता चला जाता है। देखने में आ रहा है कोई छुपी हुई चीज नहीं है, तो ये ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लग गया कि सही ज्ञान है अगर तो, सही ज्ञान है तो कषाय मंद होना चाहिए। अब तो की चर्चा करते करते कहो एक्साइटेड हो जाए, हाँ करने गए थे कषाय मंद, और हो सकता है कि ज्ञान की चार बातें सीखने के बाद में और ज्यादा कषाय बढ़ जाए। और प्राणी मात्र से मैत्री नहीं, प्राणी मात्र से मैत्री नहीं, ये तो बहुत कोई विरला होगा। उसी के लिए सम्य ज्ञान होने पर प्राणी मात्र से मैत्री आएगी, सामान्य ज्ञान होने पर मैत्री नहीं बढ़ती। सामान्य ज्ञान होने पर तो दूसरे के प्रति तिरस्कार का भाव आता है, अपने आप को होशियार समझने का भाव आता है, दूसरे को तुच्छ दीनहीन समझने का विचार आता है। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे जैसे सम्य ज्ञान बढ़े वैसे वैसे प्राणी मात्र के भीतर उसी आत्म तत्व की झलक दिखाई देनी लगे, इसलिए प्राणी मात्र कोई भी यहां दुखी ना हो ये भाव उत्पन्न होना चाहिए मैत्री का। देन तत्त्वम विबुज्जे, जिसके द्वारा आत्म तत्व का बोध जागृत हो जाए, सारा संसार मालूम पड़ जावे, वैसा वाला ज्ञान हमारे यहां पर ज्ञान नहीं कहलाता, जिससे हम अपने आत्मा को जान लें। जो एक गम जाने सो सब्वम जाने, और जो एक गम अभी ना जाने सो सब्वम अभी ना जाने। एक को यानी जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, मानिएगा कि उसने सब जगत को जान लिया, और जिसने अपने आप से बेखबरी रखी वो सब कुछ भी जान ले तब भी उसका वो जानना उसके जीवन के उत्थान के लिए कारण नहीं बन पाएगा। हम यहां उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं जो जीवन के उत्थान का कारण बनता है, जो हमारे लिए भौतिक सुखों को दिला देने वाला ज्ञान है। वो तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के आप ले सकते हैं, ढेर सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और आजकल तो इंस्टीट्यूट क्या है, आजकल तो इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स तो है ही नहीं, इंडस्ट्रीज हैं जिनमें कि रॉ मटेरियल जाता है और प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं कि हाँ ये आ गया एक आदमी और संसार में, अब इसको जॉब दो, इसको सैलरी के लिए व्यवस्था करो। रोटी दो कमाने लायक ज्ञान तो संसार में बहुत सारा है, लेकिन अपने आत्मा के कल्याण का ज्ञान, वो विद्या आत्म विद्या वितराग विज्ञान, उसे प्राप्त करने के लिए तो हमें ऐसी दृष्टि प्राप्त करनी होगी कि जिसमें हम अपने कल्याण के लिए उस आत्म तत्व को जानने के लिए उत्सुक हों। तो जेन तत्त्वम विबुज्जे, जिससे तत्व का बोध हो। वरना बहुत लोगों के पास छह उपशम है, प्रयोजन भूत सात तत्वों को जानने में वो अपने छह उपशम का उपयोग नहीं करते हैं। दुनिया भर की ढेर सारी चीजें जानने में अपने छह उपशम का, उसका क्या हुआ, उसका क्या हो रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है और किसका उत्थान पतन हो रहा है, इसके बारे में तो बहुत सारा लोगों को अपने शयोपसम के द्वारा जानने में आता है। आचार्य महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि लोग कहते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, वो किताब पढ़ते नहीं मानती, ये शास्त्र मेरे से नहीं आता, संस्कृत मेरे को नहीं आती है, धर्म की बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। बाहरे ज्ञान वैसे तो बहुत है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि चाहे जैसे अक्षरों में लिखा हो टेढ़े मेढ़े अंग्रेजी में आधे अधूरे, और जैसे ही स्लिप हाथ में आती है और फौरन देखते ही साथ इस किस मेडिसिन का ये नाम लिखा है, और वो इतनी सारी मेडिसिन्स रखी उनमें से कहाँ रखी है और कितनी बची हैं, तीन चार भी पड़ी हुई उस डिब्बे में, वहां तक ले जा करके और उसको फट से दे देता है। इतना तो ज्ञान है, इतना तो शयोपसम है। और जब हम कहते हैं कि आत्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कहते उसमें तो हमें उतना है नहीं, हमारा तो हम अज्ञानी है महाराज, क्या करें, हाँ,
इस बारे में अज्ञानी है, और वहां संसार में तो सबसे ज्यादा ज्ञानी बने फिरते हैं कि हमसे ज्यादा होशियार कोई नहीं, हमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं है संसार। ये हमें विचार करना पड़ेगा कि हमारा वो ज्ञान वास्तव में हमने दो रोटी कमाने लायक हासिल किया है, या आत्म कल्याण के लिए भी एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। 72 कलाओं में से दो ही कलाएं हैं संसार में, एक जिससे कि जीव का उद्धार होता है वो कला सीखी हमने, वो आर्ट ऑफ लिविंग है हमारे पास, वो नॉलेज है हमारे पास जिससे कि अपना आत्म कल्याण कर सकें, और आजीविका चलाने के लिए ज्ञान तो बहुत हमने हासिल किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आजीविका चलाने का ज्ञान हासिल मत करो, लेकिन उसके साथ साथ आत्म कल्याण के लिए भी मुझे ज्ञान हासिल करना, मेरे पास थोड़ा सा समय उस ज्ञान के लिए भी हो जिससे मेरा अज्ञान घटे, जिससे मेरे संसार के भ्रमण में कारणभूत राग द्वेष घटे, जिससे कि मुझे अपने उस आत्म स्वरूप और आत्म वैभव का ठीक ठीक बोध हो सके, वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो। और इतना ही नहीं, मुझे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव मेरे मन में उत्पन्न हो जाए, वास्तव में तो वही ज्ञान श्रेष्ठ है। एक छोटी सी घटना सुनाऊं, ज्ञान पर अपन चर्चा कर रहे हैं, मैं बहुत सावधान होकर चर्चा करूंगा, पर आप भी बहुत सावधान होकर के ज्ञान हासिल करें, क्योंकि ज्ञान सबसे ज्यादा कल्याणकारी भी है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, लेकिन कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण। ये आप अपने जीवन में झांक करके देखें। अपन कहते ना कि मूरख होने व्यापे जगत गति। हाँ, ज्यादा ज्ञान नहीं है तो ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है, सुख दुख उसको ज्यादा नहीं व्यापता, लेकिन जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है उतनी उतनी सेंसिटिविटी बढ़ती जाती, उतनी संवेदनशीलता बढ़ती चली जाएगी, और फिर सावधानी रखनी पड़ेगी कि वो संवेदनशीलता हमारे लिए किस दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने शरीर और भौतिक सुखों के प्रति हम संवेदनशील हो जाएं, होना तो चाहिए था प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील, वो इसलिए ज्ञान बहुत हमारे जीवन का कल्याण करने वाला भी है, और जरा सा चूक जाएं तो उसी ज्ञान के माध्यम से जो कि भौतिक ज्ञान बन जाता है वीतराग विज्ञान से हट करके इंद्रभूति गौतम अपार ज्ञान को धारण करने वाले थे, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी 66 दिन तक, इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान करके विचार किया कि इंद्रभूति गौतम के आने पर, उनके दीक्षित होने पर ही भगवान की दिव्य ध्वनि हम सबके योग हो पाएगी, सुनने के योग उनको कैसे लाया जाए। तब उनके पास जाकर के बटुक ब्राह्मण का वेश बना करके क्या कहा था, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्या पंचान्नी चास्तिकाया ब्रस्समिति ज्ञान है चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्युवन महतैः प्रोक्त महर्द विषय प्रत्येति सद्धदाति स्प्रसति च यः स वै मतिमान धीता अधीता। यह कारिका मैंने कहीं सुनी है, आप तो बहुत ज्ञानवान हैं, मुझे बताएं इसका अर्थ क्या है। मुश्किल में पड़ गए कि त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य, पंचास्तिकाए, 9 पदार्थ, 7 तत्व, इन पर श्रद्धान होने पर ही दृष्टि निर्मल होती है, वास्तव में इनका ज्ञान ही हमारे जीवन को मोक्ष मार्ग में आरूढ़ करने वाला है, ये तो बता ही नहीं। तो क्या कहा था कि ठीक है, अब आपको नहीं मालूम, हम तो सोच रहे थे आप बहुत ज्ञानवान हैं, आपको नहीं मालूम, तो सुना है कि कोई भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हो गए हैं, उनके समोशरण में जाता हूं, वहीं पूछूंगा। तो तैयार हो गए थे कि मैं भी चलता हूं, देखता हूं वो कौन है मेरे से ज्यादा ज्ञानवान। और वहां तक ले जाने के बाद जैसे ही उस वीतराग मुद्रा का दर्शन होते ही वो ज्ञान पूरा का पूरा, जो संसार बढ़ाने वाला ज्ञान था, वो संसार से पार होने वाले ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। ज्ञान कुछ भी नहीं करता, अगर वो सम्यक दर्शन के साथ में है तो कुछ कर पाता है कल्याण, वरना मिथ्यात्व के साथ तो ज्ञान बहुत लोगों के पास में है। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, एक इंद्रिय जीव भी हो तब भी उसके ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को श्रुत ज्ञान नहीं कहते हैं। श्रुत ज्ञान तो तब कहलाएगा, मति श्रुत ज्ञान, जबकि सम्यक दर्शन के साथ में हो तब वो कल्याणकारी होगा। इसलिए हम इससे पहले कि भगवान के द्वारा बताए गए उस ज्ञान को हासिल करें, अपनी भूमिका बना लें। वैसे तो हमने पिछले दिनों उस तैयारी को पूरा कर लिया है कि हमारी दृष्टि निर्मल हो जाए, ताकि जो ज्ञान मैं हासिल करूं वो ज्ञान मेरे संसार बढ़ाने वाला ना हो, संसार से पार उतारने वाला हो। फिर भी हम कहीं चूक सकते हैं, हो सकता है कि जब ज्ञान की बातें हम सीखने जाएं तो संभव है कि उस ज्ञान से हम यश ख्याति ये भी अर्जित करने लगे, चार लोगों के बीच अपने को विद्वान कहलाने की हमारे भीतर भावना उत्पन्न ना हो जाए, किसी को भी हम तुच्छ ना समझने लगें, किसी का तिरस्कार ना करने लगें, अपने चलते किसी को अज्ञानी ना समझने लगें। ज्ञान की सबसे बड़ी कसौटी है कि जिसके होने पर किसी को हम अज्ञानी नहीं समझते, वरना अक्सर ये देखा जाता है कि ज्ञान की चार बातें सीख लेने वाला उस ज्ञान के चलते दूसरे को अज्ञानी साबित करने में लगा रहता है कि तुम तो कुछ नहीं जानते। एक जने कहने लगे कि अबे तो महाराज को तत्व को स्वरूप ही नहीं मालूम, उनको मालूम था। मतलब वो जो गहरी चर्चा है वो करने लगो तो तत्व का स्वरूप मालूम है, तो अकेले चर्चा से होगा क्या? उस तत्व को अपने जीवन में हमने अगर साक्षात्कार कर लिया है तो पर्याप्त है। एक बार जान लिया है कि मेरे आत्मा का स्वरूप क्या है और वीतरागता मेरा स्वरूप है, तो फिर ये राग द्वेष का प्रपंच ना बढ़ाऊं, बस इतना ही मेरा काम है। मैं राग द्वेष को घटाने के लिए जो कुछ भी हो सके वो करूं, शास्त्र भी पढ़ूं तो काहे के लिए, राग द्वेष घटाने के लिए। वर्णी जी से जब बारीक चर्चा करते थे लोग, तो बारीक चर्चा तो कर लेते थे वो, फिर बाद में कहते क्या थे, भैया जान वेखो तीन ही लोक डरो है, सो जब चाहे जब जानत रहियो। अबे तो छोड़ वेखो तीन बातें हैं, राग द्वेष मोह छोड़ दो। राग द्वेष मोह छोड़ दिया तो तीन लोक का ज्ञान अपने आप हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये सावधानी रखने की है कि जब जब भी मैं ज्ञान की चार बातें सीखूं, महान आत्माओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को मैं अपने हृदय में धारण करूं, तो सावधानी रखूं कि ऐसा अहंकार ना आ जावे कि मैं ही श्रेष्ठ हूं और अन्य तो सब जीव तुच्छ हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में सद्भाव बना रहे, उनके प्रति भी संवेदना और मैत्री बनी रहे। ये ज्ञान के साथ जिसको अपन कहते हैं कि विनय बनी रहे, विनय के मायने क्या है, रिवरेंस ऑफ लाइफ, सबका सम्मान, जहां जहां जीवन धड़कता है उन सब के प्रति मेरे मन में सम्मान है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पेड़ के पास जाकर के कहो कि प्रणाम, आपको मेरा प्रणाम, आप विनय कहा था महाराज ने, विनय का कहा, नहीं, सम्मान के मायने कि मेरे द्वारा पेड़ को क्षति ना पहुंचे, ये है सम्मान, रिवरेंस ऑफ लाइफ। जहां जहां सांस धड़कती है उसकी क्षति मेरे जीवन, मैं ऐसा जीवन जीऊं जिससे कि उसकी क्षति ना हो। एक निमाई पंडित थे और एक रघुनाथ पंडित, दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, वो एक ही स्कूल में एक ही गुरुजी से पढ़े और विदा ली, पढ़ाई पूरी हो गई, घर लौटने लगे, तो कहा कि फिर कभी मौका आएगा तो मिलेंगे। पर वर्षों ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि दोनों मित्र मिल सकें। 12 बरस के बाद एक दिन नदी के किनारे ऐसा संयोग जुड़ा कि दोनों मित्र मिल गए, एक ही नाव में बैठे, चकित हो गए, गदगद हो गए, आंसू आ गए दोनों के आंखों में कि वर्षों बाद मित्र मिले हैं। राजी खुशी जो भी पूछना थी वो पूछी। निमाई पंडित तो बड़े आदमी के बेटे थे, रघुनाथ पंडित तो अभावग्रस्त परिवार में उत्पन्न हुए थे। रघुनाथ पंडित ने बहुत मेहनत से इन 12 वर्षों में व्याकरण का एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखकर तैयार किया था, जिसे भेंट करने वे नदी के उस पार राजा के पास जा रहे थे। शायद राजा हमारे इस ग्रंथ का सम्मान करे और सम्मान में कुछ राशि दे दे तो गृहस्थी चल जाएगी, वरना बहुत अभाव
में जीवन व्यतीत हो रहा, ऐसा सोच करके वे अपना शास्त्र वेस्टर्न में बांधे, पन्ने पन्ने पे लिखा जाता था सो बांध करके कपड़े में और गोद में रखे हुए चले जा रहे हैं। निमाई पंडित को ये बात मालूम तो पड़ गई, पर निमाई पंडित के सुनहरे वेस्टर्न में लिपटा हुआ शास्त्र रघुनाथ पंडित से छिपा नहीं। रघुनाथ पंडित ने पूछ लिया कि इन दिनों मित्र कुछ ग्रंथ लिखा है? निमाई पंडित ने कहा कि व्याकरण शास्त्र लिखा है, राजा को भेंट देने जा रहा हूं। इतना सुनते ही रघुनाथ पंडित के चेहरे की प्रसन्नता गायब हो गई। निमाई पंडित ने भी व्याकरण पर ग्रंथ लिखा है? निमाई पंडित तो वैसे ही श्रेष्ठ ग्रंथ लिखेगा, और निमाई पंडित तो किसी बड़े परिवार को बिलोंग करता है, उसकी तो राजा सुनेंगे ही। अब मेरा 12 वर्ष में ये जो व्याकरण का ग्रंथ लिखा है उससे कौन पूछने वाला है? ये बात मन के अंदर आई तो चेहरे की प्रसन्नता जो क्षण भर पहले मित्र के मिलने से आई थी वो गायब हो गई। लेकिन निमाई पंडित से ये बात छुपी नहीं रही, उनके चेहरे पर आते जाते भाव देख करके निमाई पंडित का मन भी व्यथित हो गया, और रघुनाथ की गोद में से देखें तो कैसा ग्रंथ लिखा है, तुम्हारा ग्रंथ तो बहुत श्रेष्ठ ही होगा। रघुनाथ हाथ पकड़ करके हाथ जोड़ते रहे, नहीं नहीं मेरे ग्रंथ में क्या है, आपका ही श्रेष्ठ होगा ग्रंथ। एक एक पन्ना खोल करके पढ़ते चले जाते हैं निमाई पंडित, और प्रशंसा करते रघुनाथ की कि क्या ग्रंथ लिखा है तुमने। रघुनाथ पानी पानी है, आंख नीची है कि कर लो प्रशंसा, इससे क्या होता है, राजा तो सम्मान तुम्हारे ही ग्रंथ का करेगा, बड़े आदमी के पुत्र हो।